मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 दिसंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और इन्हीं तुलसीदास जी ने रामचरित मानस जैसे महान ग्रंथ की रचना करने के बाद एक और रचना की थी जिसका नाम है विनय पत्रिका। उस विनय पत्रिका में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मार्मिक कविता है और उनके शुरू की केवल दो लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में, आप देखिए जो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर चुके हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहुं कहौं यह रहनी रहौंगो, यानी कि मैं कब इस तरह का जीवन जीऊंगा, कबहुं कहौं यह रहनी रहौंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, यानी कि भगवान की कृपा से संत का स्वभाव मुझे मिले। और इसके बाद की लाइन है, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूंगो, यानी कि जो कुछ भी मुझे मिल जाएगा जथा लाभ उसी से मैं संतोष कर लूंगा और कभी किसी से किसी भी चीज की वस्तु की व्यवहार की अपेक्षा नहीं करूंगा, काहू से कछु न चाहूंगो, यानी कि जब आप किसी से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि आप संत बन जाएंगे। और तुलसीदास जी अपने जीवन के उत्तरार्ध में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अभी भी लग रहा है कि नहीं, जो संत का स्वभाव होना चाहिए वह मुझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक ऐसे संत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही व्यावहारिक संत रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह कि जिन्हें मैं बहुत निकट से जानता हूं। निकट से क्या जानता हूं, जो मेरे जीवन में रचे बसे हैं बल्कि मेरे जीवन के निर्माण में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्हें मैं अपने उम्र के लगभग लगभग 5-6 साल से तो जानने लगा था, धुंधली स्मृतियां अभी भी उनके बारे में मेरे दिमाग में हैं। और दरअसल होता क्या था कि हम लोग गांव में रहते थे तो ये गांव में हमारे यहां आया करते थे, रुकते भी थे, लेकिन इनके आकर के रुकने की जो विशेषता थी, यहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि ये उस तरह के दामाद में नहीं थे जिनके आने के बाद लोगों के दम बिल्कुल रुक से जाते हैं। दामाद जब घर में आते हैं तो आप देखिए कि कितनी परेशानी होती है, बल्कि ये एक ऐसे दामाद थे हमारे घर के जिनके आने के बाद पूरा का पूरा परिवार अपने को दमदार महसूस करने लगता था। आते थे, रहते थे, लगता ही नहीं था कि हमारे घर के दामाद हैं, लेकिन उस समय जरूर खराब लगता था जब ये मेरी सबसे प्यारी बड़ी बुआ को अपने साथ लेकर शहर चले जाते थे, यानी कि सीधी सी बात है मित्रों कि ये मेरे फूफा जी थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले वो हम सबको छोड़कर चले गए, उनकी उम्र लगभग लगभग 78-79 साल की थी। अब इनके बारे में, इनके संत स्वभाव के बारे में कुछ मैं आप सबसे बताना चाहूंगा और इसके माध्यम से जनरली मैं कहना यह चाहता हूं कि वास्तव में संत होता क्या है। मित्रों, उस समय से मैं इन्हें जानता हूं, 6 साल की उम्र से 1 साल तक 9th की पढ़ाई मैंने इनके पास ही रह करके की थी, अपनी बड़ी बुआ जी फूफा जी के पास मैं रहता था शहर में। 1 साल तक मैं लगातार बहुत निकट में इनके रहा और इसके बाद शहर में आकर के जब मैंने दुकान खोल ली तो 75 से लेकर 83 तक जो इनकी कपड़े की दुकान थी और जो मेरी रेडीमेड कपड़े की दुकान थी उसके बीच में केवल एक छोटी सी सड़क का ही फासला था, अदरवाइज हम सब बिल्कुल आमने सामने थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इन्हें इतने निकट से जानता हूं। आज जबकि वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं, मैं सोचने की कोशिश करता हूं उन क्षणों को कि क्या सच में कभी मैंने उनको गुस्सा होते हुए सुना, क्या मैंने सच में कभी उनके चेहरे पर तनाव, निराशा, क्रोध के भाव देखे। मित्रों, बहुत याद करने के बाद भी मुझे कोई ऐसी घटना याद नहीं आ रही है, उनके चेहरे का कोई ऐसा रूप याद नहीं आ रहा है जब मैं कह सकूं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ था। अब आप देखिए कि फिर ये क्या है, अगर ये संत स्वभाव नहीं है तो फिर और क्या है। इनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, हर बात के लिए कहा करते थे हरि इच्छा। अच्छा हो जाए तो हरि इच्छा, बुरा हो जाए तो हरि इच्छा, यानी कि न तो अच्छा होने का बहुत अतिरिक्त उत्साह था और न बुरा होने का कोई बहुत बड़ा अवसाद था, वो सब कुछ हरि इच्छा पर छोड़ दिया करते थे। अभी कुछ सालों से लगातार मेरी उनसे हर सप्ताह बात होती रहती थी, और अगर 10 बार बात हो रही है, मान लीजिए 10 बार बात हो रही है, तो 7 बार वो फोन मिलाया करते थे, मैं 2-3 बार ही मिला पाता था। और जब भी वो फोन मिलाते थे मैं कहता था कि फूफा जी आप जीत गए, जीत गए मतलब आपने फोन मिला लिया, मुझे फोन मिलाना चाहिए था। तो फिर वो कहा करते थे कि विजय कैसी हार कैसी जीत सब कुछ हरि इच्छा है। और दोस्तों उन्होंने अपना पूरा जीवन इतने शांतिपूर्ण तरीके से जिया, इतने आनंद के साथ जिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनका चेहरा ऐसा लगता था जैसे कि कोई खिला हुआ गुलाब, और सच में उनका चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह सुंदर और बहुत ही, आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल गुलाबी रंग का भी था। आप जब भी उनके चेहरे को देखते आपको उनके चेहरे पर एक असीम शांति और हमेशा मुस्कुराहट का भाव ही देखने को मिलता है था। और मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या सच में आप लोगों ने उनको गुस्सा होते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा, किसी चीज में उलझते हुए देखा, किसी से झगड़ते हुए देखा, तो मुझे तो अभी तक कोई नहीं बता सका है। मुझे लगता है कि उनकी जो बनावट थी भगवान ने कुछ विशेष किस्म की करके रखी थी, उनके अंदर वो थैली ही नहीं थी जिसमें गुस्सा होता है, जिसमें प्रतिशोध होता है, जिसमें जहर भरा रहता है, जिसमें नाराजगी भरी रहती है, जिसमें शिकायतें भरी रहती हैं, जिसमें अपेक्षाएं भरी रहती हैं, वो था ही नहीं उनके पास, वो सिस्टम ही नहीं था, वो उपकरण ही नहीं था उनके सिस्टम में। उसकी जगह क्या था, ऐसा लगता है जैसे कि उनका दिल और उनका दिमाग चाशनी में डूबा हुआ हो। जब भी बात करते बहुत मिठास के साथ बात करते, उनसे बात करने का मन करता था, उनसे उनको लगातार सुनते रहने का मन करता था, क्योंकि उनको सुनना एक प्रकार से अपने आप को सुकून देना हुआ करता था, जैसे कि बहुत सुकून मिल रहा हो। और उससे भी बड़ी बात मित्रों, मैंने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि काहू सो कछु न चाहूंगो, इन्होंने उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, इन्होंने कभी किसी से कुछ चाहा तो है ही नहीं, बल्कि उसकी जगह दिया ही दिया, बांटा ही बांटा और सिर्फ बांटा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे फूफा जी थे। जी हाँ, इनका नाम हरवंश केड़िया था और ये अंबिकापुर में रहते थे, जिनका अभी अभी देहावसान हुआ। और मैं ये बात बिल्कुल गारंटी के साथ, ईमानदारी के साथ और मित्रों अपनी ओर से श्रद्धांजलि के रूप में कह रहा हूं कि यदि मेरे फूफा जी नहीं रहे होते तो इनफैक्ट मेरी जो जिंदगी की जो यात्रा थी वो थम करके बहुत ही सीमित क्षेत्र की गुलाम बन चुकी होती। मुझे गाँव से शहर में निकाल कर लाने का अगर किसी को श्रेय है तो वो फूफा जी को है। बचपन में ही मेरे पिता नहीं रहे थे, और यदि मैं ये कहूं कि मेरे पिता के निधन के बाद सच्चे अर्थों में मेरे फूफा ही मेरे पिता जैसे थे, मेरे पिता ही थे, तो जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जाना किसी के अंदर भी कितना बड़ा खालीपन पैदा कर सकता है, और इनफैक्ट मैं उस खालीपन को अभी महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों एक बहुत ही व्यावहारिक संत के बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी है, और अपने इन्हीं शब्दों के रूप में मैं आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति की ओर से और अपनी ओर से उन्हें भावभीनी और बहुत पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों अब इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।